नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से एक साथ टेलीफोन पर बात की। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत और सिंगापुर क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और मानव रहित जहाजों जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और बढ़ाने पर हुए सहमत। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,457 और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 इंग्लैंड के लिवरपूल में शुरू। भारत का 20 सदस्यीय दल पेश करेगा अपनी चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन से एक साथ टेलीफोन पर बात की। उन्होंने वैश्विक मुद्दों के संयुक्त समाधान, स्थिरता और पारस्परिक समृद्धि के लिए नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भूमिका पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के बीच विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित मजबूत और घनिष्ठ संबंध है। इन नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार, स्थिरता, रक्षा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तनशीलता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया है। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के शीघ्र समापन और IMEEC गलियारे के कार्यान्वयन के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यूक्रेन में संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
भारत और सिंगापुर क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और मानव रहित पोतों जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही देशों ने समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी बचाव में सहयोग जारी रखने के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचों के भीतर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। सिंगापुर ने मलक्का जलडमरू मध्य गश्त में भारत की रुचि की सराहना की है। दोनों ही देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत और सिंगापुर ने आज नागर विमानन, अंतरिक्ष, कौशल विकास, डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार और हरित तथा डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के बीच आज नई दिल्ली में हुई वार्ता के बाद इन समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। आज हमने बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्ष साझेदारी को व्यापक बनाएंगे। दोनों देश घनिष्ठ नागरिक सेवा सहयोग सहित आदान प्रदान बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं।
Under Prime Minister Modi's leadership, India is now the fourth largest economy in the world with a dynamism and influence felt far beyond its borders. Our bilateral relationship has grown in tandem. Singapore is the largest foreign investor in India, accounting for around a quarter of India's foreign direct investment inflows. Last year, PM Modi and I agreed to elevate relations to a comprehensive strategic partnership, or a CSP.
विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों ही नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रोडमैप को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि ये रोडमैप द्विपक्षीय सहयोग की मजबूती को दिखाता है और इसे दिशा और गति प्रदान करता है।
Today, the two leaders adopted a roadmap for our comprehensive strategic partnership. The roadmap truly reflects the range and depth of our bilateral cooperation and provides direction and momentum to it. This roadmap will facilitate bilateral engagements across 8 priority areas, including economic cooperation, skills development, digitalization, sustainability, connectivity, healthcare and medicine, defense and security cooperation, and people-to-people and cultural exchanges.
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि भारत और सिंगापुर एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण भागीदार हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से फोन पर बात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत इस संघर्ष के शीघ्र अंत और स्थायी शांति की स्थापना का समर्थन करता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है 1457। स्थानीय मीडिया के अनुसार कुनार और नंगरहार में भूकंप के कारण 6700 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। अंतर्राष्ट्रीय राहत एजेंसियां दूरदराज के इलाकों में लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। एक बहुप्रतीक्षित फैसले में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2004 के ग्रेनेड हमला मामले में सभी 38 आरोपियों को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। इन आरोपियों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान भी शामिल हैं। न्यायिक प्रक्रियाओं की अखंडता और जवाबदेही की चिंताओं के बीच इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। नेपाल सरकार ने नेपाल में सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बृहस्पतिवार को इस निर्णय को सार्वजनिक किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 अगस्त को 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर मंत्रालय में पंजीकरण कराना ही होगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आज से इंग्लैंड के लिवरपूल में शुरू हुई। भारत का 20 सदस्यीय दल इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। भारत के पवन बर्तवाल ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग के पहले दौर में ब्राजील के माइकल डगलस दा सिल्वा ट्रिनडाडे पर जीत से भारत के अभियान की शुरूआत की। बर्तवाल ने पेरिस ओलंपियन और 2023 पैन अमेरिकन खेलों के रजत पदक विजेता को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से परास्त किया। टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोगोहेन और निखत जरीन इस प्रतियोगिता में 20 सदस्य भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षों से एक साथ टेलीफोन पर बात की। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत और सिंगापुर क्वांटम कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन और मानव रहित जहाजों जैसे उभरते क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और बढ़ाने पर हुए हैं सहमत। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1457 और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का 20 सदस्यीय दल पेश करेगा चुनौती। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।